इशिका आदर्श की बेटी नहीं थी। ये बात अभिमन्यु और इशिका तो जानते थे, लेकिन अरमान को अभी भी डाउट था। वो बार बार इशिका से इस बारे में पूछ रहा था। इशिका ने उसे रोखा जवाब दिया, लेकिन उसके दिमाग से ये बात निकल नहीं रही थी। इशिका की शक्ल उसकी फैमिली मेंबर से थोड़ी बहुत मिलती थी, तो वो दौड़कर केशव के पास गया और सीधे उसे इस बारे में पूछ लिया। अरमान को यही लगता था कि इशिका आदर्श की नहीं बल्कि केशव की बेटी है। दोनों की आंखें भी एक जैसी थीं। केशव ने भौंहें उठाकर अरमान की तरफ देखा और बेपरवाही से कहा, तुम्हें ये क्यों लगा कि वो लड़की आदर्श की बेटी नहीं है? उन दोनों की शक्लें नहीं मिलती है। दूसरा, वो जो दूसरी औरत थी, मालविका, उसकी बातों से भी मुझे एहसास हुआ, हालांकि उसने कुछ क्लियरली नहीं कहा। मुझे लगता है वो आपकी और राधिका सिंघानिया की बेटी है। अरमान के दिल में जो भी डाउट थे वो उसने केशव के सामने रख दिए थे। केशव ने गहली सांस ली और जवाब में कहा, वो मेरी बेटी नहीं है। याद कीजिए, वो हो सकती है, आपको नहीं पता है, आप दोनों की आंखें बिल्कुल एक जैसी लगती हैं, अरमान ने एक उम्मीद के साथ कहा, जिस पर केशव थोड़ा इरिटेट हो गया। केशव ने अरमान की तरफ घूरकर देखते हुए कहा, अगर हमारे बीच में कुछ ऐसा वैसा हुआ होता तो मुझे याद रहता, ये बात किसी और के सामने मत कह देना। ठीक है, मुझे लगा था कि मुझे एक कज़िन सिस्टर मिल गई, बस यही सोचकर थोड़ा एक्साइटेड हो रहा था, अरमान ने मायूसी से कहा। कुछ देर तक उन दोनों के बीच खामोशी छाई रही। केशव थोड़ी देर पहले हुए इंसिडेंट के बारे में सोच रहा था, कैसे राधिका के साथ धोखा हुआ था। एक लंबी चुप्पी के बाद अचानक केशव ने कहा, वो लड़की पहले से ही जानती थी कि राधिका उसकी माँ नहीं है, फिर भी वो उसकी भावनाओं के साथ खेलती रही। क्या लगता है तुम्हें, राधिका सिंघानिया के दिल में भी उस लड़की के लिए प्यार होगा? मुझे नहीं लगता। राधिका सिंघानिया की नज़रों में इशिका उसकी असली बेटी नहीं थी, फिर भी उसके आते ही उनके चेहरे पर चमक आ गई थी। जो भी हो, उसने धोखा किया है और उसे धोखे की सज़ा मिलकर रहेगी, अरमान ने गुस्से में जवाब दिया। तो क्या सोचा है तुमने, केशव ने पूछा। बस इंतज़ार कीजिए, ऐसा इंतज़ाम किया है कि गलती से भी वो लड़की राधिका सिंघानिया और इशिका सिंघानिया की आंखों के सामने नहीं आ पाएगी, अरमान ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। वहीं ऊपर इशिका आदर्श के पीछे पीछे राधिका के पास गई। आदर्श राधिका के पास बैठा उसके हाथ को सहला रहा था। इशिका ने आदर्श के पास जाकर धीरे से कहा, बाहर जो भी हुआ वो आपने सुना ना? इशिका बस कन्फर्म करना चाहती थी कि आदर्श इस बारे में जानता है या नहीं, कि आयशा और मालविका ने उनके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। आदर्श ने बिना इशिका की तरफ देखे हाँ में सिर हिला दिया था। इशिका को समझ नहीं आया वो आगे क्या कहे। फिर वो थोड़ी देर रुककर हिचकिचाते हुए बोली, मालविका को अरेस्ट कर लिया गया है, आयशा की हालत ठीक नहीं है, क्या आप उससे मिलने के लिए नहीं जाओगे? इशिका जानना चाहती थी कि आदर्श के दिल में अभी भी आयशा के लिए प्यार है या नहीं, आखिर वो उसका खुद का खून था। इशिका का सवाल सुनकर आदर्श ने इशिका की तरफ देखा और सख्त आवाज में कहा, वो मेरी राधिका की बेटी नहीं है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आज किस हाल में है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। उसका जवाब सुनकर इशिका चौंक गई। आदर्श को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि आयशा उसकी बेटी है या नहीं, वो उससे इसलिए प्यार करता था क्योंकि वो राधिका की बेटी थी। वो अब आयशा के साथ ठीक वैसा ही बर्ताव कर रहा था जैसा वो इशिका के साथ करता था। इशिका को समझ नहीं आया वो आगे इस बारे में कैसे बात करे। उसने हिचकिचाते हुए कहा, वो मुझे लगता है कि शायद मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। तुम राधिका की बेटी हो तो जाहिर सी बात है कि तुम मेरी बेटी हो, आदर्श ने धीरे से कहा। आदर्श की बातों से इशिका को समझ आ गया था कि उसका अंदाजा बिल्कुल सही था, आदर्श जानता था कि वो उसकी बेटी नहीं है। इशिका आगे कुछ पूछ पाती उससे पहले आदर्श ने उसकी तरफ देखा और काफी नरमी और झुकी आंखों से कहा, एक्चुअली मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ, अगर तुम इस दुनिया में नहीं आई होती तो शायद ही राधिका कभी मुझसे शादी करती। फिर कुछ पल रुककर उन्होंने राधिका की तरफ देखकर कहा, मैंने कभी उसे धोखा नहीं दिया, मेरा मालविका के साथ कोई रिश्ता नहीं था, राधिका से मैं बहुत प्यार करता था और उससे शादी ना कर पाने के दुख की वजह से मैंने एक रात बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और उसी का फायदा मालविका ने उठाया, उसने मेरी ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिए थे। आदर्श का दिल सच्चा था, वो राधिका से बहुत प्यार करता था। फिर उसने राधिका के गाल पर हाथ रखकर काफी प्यार से कहा, उठ जाओ ना राधिका, देखो तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास आई है, क्या तुम उसे प्यार नहीं करना चाहती? आखिर सच सामने आ गया, तुम्हारी असली बेटी तुम्हारे साथ है। इशिका ने राधिका की तरफ देखा, वो उसी शांति से सोई हुई थी। अब तो इशिका को भी राधिका के होश में आने का इंतजार था, क्योंकि वो अपने बायोलॉजिकल फादर के बारे में जानना चाहती थी, जिसके बारे में राधिका उसे बता सकती थी। इशिका राधिका की दूसरी तरफ गई और उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसे माँ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तभी एक डॉक्टर और दो नर्स वहाँ चेकअप के लिए आए। उन्होंने राधिका का चेकअप किया। उसकी हेल्थ ठीक थी तो वे जाने लगीं। जाते वक्त नर्स आपस में बात करने लगीं। उनमें से एक ने कहा, तुमने सुना, यहाँ एक पेशेंट बुरी तरह पागल हो गई है। अरे वो पागल नहीं हुई है, पहले से ही पागल है। तुम्हें पता है वो प्रेग्नेंट थी और यहाँ पर आकर खुद ही अपना मिसकैरेज कर लिया। डॉक्टर को उसका यूट्रस निकालना पड़ा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अच्छा हुआ मेंटल हॉस्पिटल से उसे लेने के लिए आ गए। वो हम में से किसी पर भी हमला कर सकती थी। डॉक्टर ने बताया देखने में तो बिल्कुल सामान्य लगती है। इशिका को कुछ अजीब लग रहा था। उसने अभिमन्यु की तरफ देखा। अभिमन्यु भी उस बारे में कुछ नहीं जानता था। वे दोनों तुरंत खिड़की के पास आकर नीचे देखने लगे। नीचे मेंटल असाइलम की एम्बुलेंस खड़ी हुई थी। वहां स्ट्रेचर पर किसी को ले जाया जा रहा था। वो कोई और नहीं, आयशा थी। इशिका चौंक गई। उसने तुरंत अभिमन्यु से पूछा, ये तुमने करवाया है? नहीं, अभिमन्यु ने सिर हिलाकर जवाब दिया। इशिका ने वापस नीचे की तरफ देखा। वो आयशा के साथ अभी कुछ नहीं करना चाहती थी। वो राधिका के होश में आने का इंतजार था, क्योंकि उसे सजा देने का हक राधिका का भी था। इशिका वहां खड़ी ही रही थी, तभी उसकी नजर वहां खड़ी काली गाड़ी पर गई, जिसके बाहर अरमान खड़ा हुआ था। अरमान ने अपना हाथ ऊपर उठाया और इशिका को मोबाइल चेक करने का इशारा किया। इशिका ने अपना फोन चेक किया तो उसने अरमान का मैसेज आया हुआ था। उसने लिखा था, अच्छा इंतजाम किया है ना मैंने तुम्हारी सौतेली बहन का। इशिका समझ गई थी कि ये अरमान का किया धरा था। अगर अभिमन्यु केशव सिंघानिया को रोकने के लिए नहीं जाता तो शायद आज वहां आयशा की जगह इशिका होती। अरमान ने आगे मैसेज करते हुए कहा, क्या तुम थोड़ी देर के लिए नीचे आ सकती हो? मेरे चाचा तुमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं और तुम्हें सॉरी भी कहना चाहते हैं। इशिका को समझ नहीं आया वो क्या जवाब दे। केशव सिंघानिया थोड़ा अजीब टाइप का था। वो राधिका के लिए किसी भी पागलपन पर उतर आता था। थोड़ी देर पहले जिस तरह से आदर्श और केशव के बीच बातचीत हो रही थी, उससे साफ था कि राधिका केशव से नहीं मिलना चाहती है। इशिका ने जवाब में लिखा, मैं नहीं आ सकती, क्योंकि जब तक मेरी मॉम को होश नहीं आ जाता और वो परमिशन नहीं दे देती, मैं नहीं आऊंगी। हालांकि राधिका ने उसे मना नहीं किया था, पर फिर भी इशिका के दिल में एक अजीब सी खुशी हो रही थी। बचपन में जब दूसरे बच्चे कहते थे कि उनकी माँ उन्हें कुछ भी करने से मना करती हैं, तो वो इसे बहुत मिस करती थी। मालविका तो उसे एक ही काम करने को कहती थी और वो था आयशा को खुश रखना।
इशिका फिर राधिका के पास आई। हालांकि उसके लिए ये कहना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसने धीरे से कहा, माँ। इशिका ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके माँ कहने पर राधिका की उंगलियां हल्की सी हिली थी। इशिका उनकी तरफ ध्यान दे पाती उससे पहले उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आ गया। इशिका ने कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, डॉक्टर अनामिका, हमने आपको ये बताने के लिए कॉल किया है कि अल्जाइमा मेडिसिन पर जो भी रिसर्च हो रही थी वो अब पूरी हो चुकी है। हमें कुछ ऐसे पेशेंट की ज़रूरत है जो इस मेडिसिन के ट्रायल के लिए स्वेच्छा से आगे आएँ। कुछ लोगों ने साइन अप भी किया है, लेकिन हम चाहते हैं आप ही उन्हें शॉर्टलिस्ट करें। क्या आप इस काम को आगे संभालना चाहेंगे? नहीं, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम सिर्फ मेडिसिन की रिसर्च करना और उस रिसर्च के हिसाब से आगे की गाइडेंस देना है। उसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है, इशिका ने जवाब दिया। एक्चुअली हम चाहते हैं कि आप इसमें इन्वॉल्व हों, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कनेक्शंस के चलते इस दवाइयों को महंगे दाम पर खरीदना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले ये ज़रूरतमंद लोगों को मिले। अगर आप सख्ती से कहेंगे तो कोई कुछ नहीं कह पाएगा। सभी काम दिल्ली के लैब के हॉस्पिटल से होगा। प्लीज़ मना मत कीजिएगा। आपकी रिसर्च की हुई मेडिसिन पर कोई और फैसला ना ले, सामने मौजूद डॉक्टर ने कहा। इशिका ने मजबूरी में हाँ कहते हुए कहा, ठीक है, फिर जिन पर दवाइयों का ट्रायल किया जाएगा उसमें मैं एक नाम डालना चाहती हूँ। हाँ, आपको कौन मना कर सकता है? वैसे कौन है वो इंसान? सामने मौजूद शख्स ने पूछा। इशिका ने इधर उधर देखा और फिर अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, वो मेरे पति की दादी हैं। थोड़ी बहुत बात करने के बाद इशिका ने कॉल काट दिया था। दवाइयां बन चुकी थीं। इशिका को बेसब्री से इंतजार था जब दादी पर उन दवाइयों का असर होगा और उसे याद आ जाएगा कि इशिका और अभिमन्यु की शादी आखिर किस तरह से हुई थी। आज का दिन इशिका के लिए अच्छा था, क्योंकि उसे उसकी माँ मिल गई थी और दूसरा, दादी के लिए जो दवाइयां बनाई जाने वाली थीं वो प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी थी। इशिका मुस्कुराते हुए राधिका की तरफ देख रही थी, तभी अभिमन्यु के पास किसी का कॉल आया। उसने कॉल रिसीव करने के बाद परेशान आवाज में कहा, क्या दादी बेहोश हो गई है? मैं अभी घर जा रहा हूँ। बात करने के बाद अभिमन्यु ने इशिका की तरफ देखा। होश में आने के बाद वसुधा को इशिका ही चाहिए होती थी, लेकिन इस वक्त अभिमन्यु उसे क्लियरली कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि उसकी खुद की माँ भी बीमार थी। इशिका ने अभिमन्यु की नज़रों को समझते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ चलूँगी। पहले इशिका राधिका के साथ रहना चाहती थी, क्योंकि राधिका बेहोश होने से पहले उसे कुछ बताना चाहती थी। अब इशिका जान चुकी थी कि राधिका को क्या बताना था, तो वहां रुकने का कोई फायदा नहीं था। ऊपर से राधिका की हेल्थ भी ठीक थी, वो बस आराम कर रही थी और आदर्श उनके अच्छे से ध्यान भी रख रहा था, तो इशिका अभिमन्यु के साथ घर जाने लगी। वहीं पार्किंग एरिया में अरमान और केशव खड़े हुए थे। इशिका ने अरमान को जो जवाब दिया था उसे सुनने के बाद वो आंखें फाड़कर उसके मैसेज को देख रहा था। सीधे सीधे केशव से मिलने से मना कर दिया था। ऐसे शख्स से मिलने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते थे, यहाँ तक कि नक्श और आयशा भी उससे मिलने के लिए आए थे। अगर आज इशिका यहाँ पर मिलने आती और केशव से अच्छे से बात करती तो शायद उनके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाते। अरमान को इस तरह हैरान परेशान देखकर केशव ने कहा, क्या हुआ, कोई भूत देख लिया है क्या मोबाइल में? अरमान ने कुछ नहीं कहा और अपनी मोबाइल स्क्रीन केशव के सामने कर दी। केशव ने जब मैसेज देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो धीरे से बोले, ये लड़की सच में राधिका की ही बेटी हो सकती है। पहले जो आई थी उस पर मुझे डाउट था, क्योंकि राधिका की सेल्फ रिस्पेक्ट और बिहेवियर काफी अलग है। उसे देखकर लग रहा था कि वो मुझे मक्खन लगाने की कोशिश कर रही है। इशिका के मना करने के बाद भी केशव उसकी तारीफ कर रहा था, ये देखकर अरमान को थोड़ा अजीब लगा। केशव गाड़ी में बैठने वाले थे तभी उनकी नज़र इशिका और अभिमन्यु पर पड़ी, जो वहां से निकल ही रहे थे। केशव ने उन्हें पीछे से देखा था। उसने कैजुअल्स पहने हुए थे और उसकी नेचुरल ब्राउन हेयर कमर को छू रहे थे। उसकी पर्सनैलिटी में राधिका की झलक दिखाई देती थी। केशव इशिका को देख रहे थे तभी अरमान ने कहा, चाचू मिसेस सिंघानिया पूरी तरह ठीक है। हमने प्लान बनाया था कि हम उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे और उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसे दूर करेंगे। अब जब सब ठीक हो गया है तो क्यों ना हम वापस दिल्ली चलते हैं, हमारा काम भी अटका हुआ है। डॉक्टर ने भी कह दिया है कि मिसेस सिंघानिया भी ठीक है। केशव का वहां रुकने का अब कोई काम नहीं था, लेकिन फिर अचानक उनके दिल में राधिका की बेटी यानी इशिका से मिलने की इच्छा जाहिर हुई। उन्होंने कुछ पल रुककर सख्त आवाज में कहा, गोवा का एनवायरनमेंट काफी अच्छा है, इस वक्त दिल्ली में काफी पोल्यूशन होता है, तो मुझे लगता है कि हमें इस नेचुरल एनवायरनमेंट में थोड़े दिन रहना चाहिए। इतना कहकर केशव गाड़ी में जाकर बैठ गए। अरमान थोड़ा तो हैरान हुआ लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। केशव ने मन ही मन कहा, एक बार तो राधिका की बेटी से मिलना बनता है, उससे मिलने के बाद वापस चला जाऊंगा।